ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाने वाले शिव बाप के बच्चे सो ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे डबल इंजन जिनके साथ हैं, हम यही कहते हैं कि हम ऐसी ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे ट्रेन ऊंचाई पर जाती है तो उसको डबल इंजन चाहिए। आप शिमला जाएंगे, मसूरी जाएंगे, दार्जिलिंग जाएंगे, आगे भी वो ट्रेन जाती है ऊपर, आगे भी इंजन होती है, पीछे भी इंजन होती है, क्योंकि चढ़ाई चढ़नी होती है। तो हम बच्चों के लिए भी डबल इंजन है, शिव बाबा भी है तो साथ साथ ब्रह्मा बाबा भी है, और दोनों इंजन द्वारा हमें पुरुषार्थ करने की विधि मिलती है, जिसके लिए कहते हैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो और शिव बाबा को देखो। सी फादर फॉलो फादर ऐसे कहते हैं। शिव बाबा को याद करो और ब्रह्मा बाबा ने जो किया उनके कदम पर कदम रखो, क्योंकि शिव बाबा ने जो कहा वो ब्रह्मा बाबा ने फॉलो किया। अब ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो हम फॉलो करते हैं, ये हमारे लिए बहुत सहज पुरुषार्थ है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्या करें कैसे करें। श्रीमत हमें हर मुरली में मिलती है, क्या करो कैसे करो वो श्रीमत मिलती है। और सहज करने लिए शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो करो। तो हम अगर अपने पुरुषार्थ में ये देखते हैं कि कोई भी हम कार्य करते हैं, अगर ब्रह्मा बाबा इस समय होते तो वो क्या करते, तो जो ब्रह्मा बाबा करते वही मुझे करना है, उनके कदमों पर कदम रखना है। और किसी के कदम पर हम कदम रखें वो तो बहुत सहज होता है, हमें कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। पर आज जो विषय है सहज पुरुषार्थ, दुआ देना दुआ लेना, ये विषय है। वैसे कहा जाता है कि कोई अगर बीमार है तो दवाई तो उसको लेनी है, लेकिन कहते हैं 20% दवाई पर 80% दुआ। हमारी दादी प्रकाशमणि यही कहती थी, दादी जी से पूछते थे, दादी जी आप क्या पुरुषार्थ करते हो, क्या है आपका आंतरिक पुरुषार्थ, तो दादी जी बस यही कहती थी, मैं सबको दुआएं देती हूँ और सबसे दुआएं लेती हूँ, यही मेरा पुरुषार्थ है। अब सहज है ये, बस दुआ दो और दुआ लो, ये सहज पुरुषार्थ है जिसमें कोई मेहनत नहीं। वैसे बाबा ये भी कहते हैं मोहब्बत अगर है तो मेहनत की क्या बात है, किसी को किसी से प्यार है तो उसको पाने लिए मेहनत नहीं है, वो प्यार उसको वो प्राप्त कराता है। तो बाबा से भी हमारा प्यार है, उस प्यार में उस लगन में हम मग्न हैं, तो मेहनत तो कुछ है ही नहीं। भक्ति मार्ग में हमने जितनी मेहनत की उसकी भेंट में तो यहाँ कुछ भी मेहनत नहीं है, सब सहज है। और दुआ दो दुआ लो, ये सहज पुरुषार्थ का तरीका भी बहुत श्रेष्ठ है। मुझे क्या करना है, बस दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। ये दुआएं क्या होती है और कैसे दी जाती है, कैसे ली जाती है। वैसे तो दुआएं, दुआओं के लिए कहते हैं कि दुआएं मांगी नहीं जाती है। कोई कहे भाई मुझे दुआ दो, दुआ करो, तो दुआ वो मांगे और हम कहे अच्छा मेरी दुआ तुम्हारे साथ है, वो मांगी नहीं जाती, वो तो दिल से अपने आप निकलती है किसी के लिए दुआ। और दुआ तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि एक है दुआ, दूसरी है आशीर्वाद और तीसरा है वरदान। ये तीन चीजें बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं, बड़े बुजुर्ग हमको आशीर्वाद देते हैं, और हम शरीक या हमारे से छोटे भी वो हमको दुआ देते हैं। तो दुआ तो कोई भी दे सकता है, आशीर्वाद तो बड़ी चीज है उनसे, और वरदान तो और भी बड़ी चीज है उनसे। तो बाबा ने तो हम बच्चों को वरदानी मूरत बना दिया है, तो वरदान कौन दे सकता है, बाबा के साथ साथ हम बच्चे भी दे सकते हैं, इस क्यों नहीं। परंतु कौन दे सकता है वरदान जो स्वयं भरपूर होगा। अगर खुद ही खाली है, खुद ही मांग रहा है, तो वो दूसरों को वरदान नहीं दे सकता है। वरदान देने के लिए पहले खुद को भरपूर होना पड़ेगा। एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दान देगा, भिखारी तो दान नहीं देगा, थोड़ा धनवान होगा तभी तो दान देगा। तो वरदान एक बहुत बड़ी शक्ति है, और ये भगवान दे सकता है या जो भरपूर आत्मा है, खुद शक्ति से भरपूर है, वो ही वरदान दे सकती है। और बाबा हम बच्चों को कहते तुम वरदानी आत्मा हो। रोज भगवान हमें वरदान देते हैं, और हम उनसे इतने भरपूर हो जाते हैं कि हमें औरों को भी बांटना होता है। लेकिन दुआ क्या चीज है, दुआएं जो दिल से निकलती है, किसी को कुछ प्राप्ति हुई तो उसको उसके दिल से दुआ निकलती है, भले शब्द वही होंगे। किसी भिखारी को एकदम बेचारा बहुत भूखा है, और आपने अपने टिफिन बॉक्स से उस निकाल करके उसको दिया, वो आपका भोजन था, लेकिन आपने उसको दिया, बहुत भूख लगी, आप कहेंगे कोई बात नहीं मैं नहीं खाऊंगा चलेगा, लो लो आप, किसको आवश्यक है, और आप उसको दे रहे हो, वो आपको दुआ देगा, बेटा जीते रहो जीते रहो, तो वो दुआ देगा। बड़ों के आगे जाते हैं, सिर नीचे करते हैं, वो हमारे सिर पर हाथ रखते हैं, बड़े कहेंगे बेटा जीते रहो, वो भी जीते रहो कहते हैं। एक भिखारी भी दुआ करेगा जीते रहो, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देंगे जीते रहो, प्रभु भी परमात्मा भी वरदान देता है जीते रहो, बच्चे अमर भव, है ना, भगवान भी तो वरदान देता है अमर भव। अब तीनों शब्द एक ही है, लेकिन कितना अंतर है। किसी को कुछ मिला और उसके दिल से निकली दुआ वो भी बहुत ऊंची चीज है। किसी को मैंने सुख दिया और उसके दिल से जो अंदर में उस सुख से तृप्ति हुई, उस तृप्ति के आधार से जो दिल से दुआ निकली वो भी शक्ति तो प्रदान करती ही है। इसलिए दुआ मांगने की बात नहीं है, आशीर्वाद भी मांगने की बात नहीं है, वरदान मांगने की बात नहीं है, वो अपने आप मिलती है। लेकिन हाँ, देने वाले कौन है वो अलग अलग हो जाता है। तो हम भी अगर ये कार्य कर सकते हैं दुआएं देने का हर एक आत्मा को, फिर चाहे वो कैसी भी आत्मा हो, कोई मेरा भला करे तो मैं उसको दुआ दूं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा भला किया, मुझे कुछ लाभ दिया, मुझे कुछ सुख दिया और मैं उसको दुआ करूं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मिला कुछ तो और मैंने भी रिटर्न में दिया। लेकिन अगर बुरा भी करे तो भी मैं क्या दुआ दे सकती हूँ? भला करने वाले का तो भला हो, पर बुरा करने वाले का भी भला हो, क्या उसके लिए भी दुआ निकल सकती है? या बुरा करने वाले के लिए बद्दुआ निकलेगी? निकलती है ना बद्दुआ, बुरा करने वाले के लिए तो बद्दुआ निकलती है। लेकिन बद्दुआ कभी मुख से निकले ही नहीं, चाहे कैसा भी कोई मेरे साथ व्यवहार करे। उसके लिए मिसाल क्या देते हैं, सहन शक्ति में मिसाल देते हैं ना, कि बच्चा तो पेड़ पर पत्थर मारता है, वो आम लेने के लिए आम के पेड़ को पत्थर मारता है, लेकिन वो आम का पेड़ उसको क्या देता है, आम देता है। उसके पास आम है तो वो आम देगा, बच्चे के पास तो पत्थर ही है तो पत्थर ही मारेगा। तो कोई मुझे पत्थर देता है और मैं उसको आम दूं, ये है बुरा करने वाले पर भी दुआ करना, क्योंकि मेरे पास केवल दुआएं ही हैं, बददुआएं है ही नहीं। जिसके पास जो चीज होगी वही वो चीज वो देगा ना, अगर वो चीज ही नहीं है तो देगा भी कैसे। इसलिए दुआ देने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए, दुआ देने के लिए भी विशाल हृदय चाहिए, क्योंकि अगर संकुचित मन होगा, नैरो माइंडेड होंगे, बहुत बेहद का नहीं सोचते हैं, अपने हद में ही फंसे हुए हैं, स्वार्थ में ही फंसे हुए हैं कि मुझे कुछ मिले, तो फिर हम दुआ नहीं कर सकते हैं। और हम अगर नहीं दुआ कर सकते तो दुआ मिलेगी भी नहीं। हमको अगर आता है दुआ देना तो दूसरों की भी दुआ सहज ही हमको मिल सकेगी। इसीलिए दुआ न मांगनी है और न कोई ये जबरदस्ती का सौदा है। कई बार हम बड़ों के आगे जाकर कहते हैं बस आशीर्वाद करो, सिर नीचे कर देते हैं उनके हाथ के नीचे, आशीर्वाद करो, वो भी चलो हाथ रख देता है, ठीक है भाई जीते रहो बेटा जीते रहो। पर ये तो जबरदस्ती का सौदा हो गया। और हो सकता है आशीर्वाद मुख से कर रहा हो, जीते रहो बेटा, और अंदर में क्या कह रहा हो कि पता नहीं मर जाए तो अच्छा है ऐसे भी कह सकता है, मुख से तो आशीर्वाद दिया तो वो दुआ या आशीर्वाद थोड़ी हुई। लेकिन दिल से निकले और उसके लिए तो बहुत बड़ा दिल चाहिए। उसके लिए विशाल हृदय चाहिए, सच्चा दिल चाहिए। ये भी नहीं कि इसको दुआ करूं और उसको नहीं, पक्षपात भी नहीं, सबके लिए समान। ये नहीं कि जिसने मुझे दिया उसको मैं दुआ करूं, जिसने नहीं दिया उसको नहीं करूं, मैं किसी को कुछ दूं, इसको दूं, उसको नहीं दूं। ये पक्षपात दुआ में नहीं आते। ये भी नहीं आता कि मेरा धर्म का है, मेरी जाति का है तो मैं करूं दुआ, मेरे कुल का है, मेरी बिरादरी का है, मेरे भाषा का है, मेरे प्रांत का है, मेरे देश का है। ये हदें, ये भी हदें हैं। अगर वो हदें भी हम ला देते ना तो भी दुआ नहीं हुई। पर सबके भलाई के लिए, सबके कल्याण के लिए, ये है सचमुच सच्ची दुआ देना। हम प्रकृति से भी यही शिक्षा लेते हैं। प्रकृति कभी नहीं ये कहती कि इनको दूंगी उनको नहीं दूंगी। सूरज उदय होता है ये कभी नहीं कहता है इसको मैं प्रकाश दूंगा उसको नहीं दूंगा। सागर कभी नहीं कहता कि इनको मैं जल दूंगा उनको नहीं दूंगा। पेड़ कभी नहीं कहता इनको फल दूंगा उनको नहीं दूंगा। तो ये पांचों तत्व कोई भेदभाव नहीं रखते हैं और सदा दाता समान देते ही रहते हैं। हालांकि एक बीज रोपना तो पड़ता है तब अनेक फल निकलेंगे। तो लेते तो कुछ भी नहीं है, देते कितना है। तो जैसे प्रकृति कोई हिसाब नहीं रखती, वो दाता है, तो हम भी मास्टर दाता बन सकते हैं जो सब पर दुआ करें। किसकी भी बद्दुआ मेरे प्रति भी निकलती है या मेरी किसके प्रति बद्दुआ निकलती है, वास्तव में वो भी दुख का कारण बन सकती है। कई बार होता है हमने दूसरे के लिए बद्दुआ निकाली लेकिन वो बद्दुआ उनको न लग करके मुझे ही लगेगी। इसलिए कहावत है कि किसके दूसरे के लिए अगर कोई खड्डा खोदता है तो कई बार क्या हो जाता है, उस खड्डे में खुद ही गिर जाता है। तो हम क्यों दूसरे के लिए खड्डा खोदें? क्योंकि खड्डा तो खोदा, डर लगेगा कहीं मैं ही न गिर जाऊं। क्यों मैं किसके लिए बद्दुआ मन में लाऊं, कहीं वो मुझे ही न मिल जाए। ऐसे भी नहीं कि डर है इसीलिए बद्दुआ नहीं दूं, लेकिन ये आत्मा के अंदर संस्कार बन जाए कि मुझे तो हर एक को दुआ देनी है और उसके लिए न पक्षपात है, न कोई हदें हैं, न संकुचित दिल है। भले मैं और कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। जैसे मिसाल बताते हैं ना कि एक भिखारी था, उसको भूख लगी थी, तो एक मिठाई के दुकान में गया और कहा साहब थोड़ी सी मिठाई दे दो भूख लगी है। तो मिठाई वाले ने उसको तो गालियां दी, हट जा यहाँ से। तो उस भिखारी ने कितनी सुंदर बात कही कि साहब भले आप मिठाई मत दो लेकिन मीठा तो बोलो, उसमें तो आपका खर्चा नहीं होगा। मीठा बोलने में क्या जाता है, कुछ खर्चा तो होना नहीं है। मिठाई देने में फिर भी वो 2 रुपए 5 रुपए की होगी, पर मुख से मीठा बोलने में तो कोई खर्चा नहीं है। लेकिन ये मुख से मीठा बोलना भी तब होगा जब अंदर में हमारे में मिठास होगा, अंदर में बड़ा दिल होगा। और दूसरों से भी दुआ लेने की बात नहीं है, परंतु बड़ा दिल से हम सेवा करते हैं तो उनकी दुआएं अपने आप निकलती है। हम मांगे ना मांगे हमारा फर्ज है सेवा करना। दुआएं पाने के लिए हम सेवा नहीं करते हैं। आज भी बाबा ने मुरली में बहुत अच्छी बात कही, मुझे कुछ चाहिए इसीलिए मैं सेवा कर रही हूँ, ये सेवा नहीं है। मुझे तो दधीची ऋषि की तरह, आज बाबा ने शब्द दिया मुरली में, चूर चूर हड्डी हो जाए। दधीची ने अपनी हड्डियां दे दी, यज्ञ में स्वाहा कर दी ऋषियों को असुरों से बचाने के लिए। कहानियां हैं। तो सारी दुनिया में आसुरी संप्रदाय है, लेकिन हम दधीची ऋषि की तरह सेवा करते हैं। अपनी इच्छाओं को मार कर भी नहीं करते हैं, इच्छाओं को मारे और सेवा करें ये नहीं, ताकि कुछ दुआ मिले, लेकिन इच्छाएं है ही नहीं, इच्छाएं है ही नहीं, बस सेवा करना यही मेरा परम धर्म है। और जितना हम देते हैं, ये कर्म की गति है, उतना मिलता है। ये हो नहीं सकता कि हम दें और हमें मिले नहीं, ये हो नहीं सकता। तो अगर आप दुआ चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। पर दुआएं मुझे मिले इसीलिए सेवा करूं, वो भी लक्ष्य नहीं है। पर एक ऐसा संस्कार बन जाए देने का, कोई भी आत्मा आए, जो कुछ बाबा ने मुझे दिया है मैं उससे दूसरों की सेवा करूं। बुद्धि में लक्ष्य एक ही है, सेवा का। अगर ये लक्ष्य हमारा सहज होगा तो हमारा पुरुषार्थ भी बहुत सहज चलेगा। तो जब दादी से पूछा गया, दादी जी आप क्या पुरुषार्थ करते हैं, दादी ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं पुरुषार्थ करती हूँ, बस सेवा करती हूँ, जो बाबा सेवा देता है वो सेवा करती हूँ और दुआओं से पल रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये भी कितना ऊंचा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है नहीं, कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, बस सेवा कर रहे हैं। जो भी आत्मा आए, तन से, मन से, धन से, अपने अच्छे गुणों से सेवा कर रहे हैं। लेकिन बाबा इसके लिए ये भी कह रहे हैं कि परखना भी बहुत जरूरी है, परखना भी बहुत जरूरी है। जब हम सेवा करते हैं तो दो बातों में परख शक्ति चाहिए। एक परख शक्ति है अपने प्रति, कि मेरी अपनी इच्छा तो नहीं है, और दूसरी परख शक्ति चाहिए उस आत्मा के प्रति जिसकी सेवा कर रहे हैं, कि क्या सचमुच वो आत्मा इच्छुक है। अब मैं किसी को ज्ञान दे रही हूँ, देती जा रही हूँ और वो तो समझ ही नहीं रहा है, चलो सुन भी रहा है, हाँ भी कर रहा है, पर उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। जिसको बाबा कहते हैं तवाई माफिक यहाँ वहाँ देखता है, तवा गरम तवे पर पानी डालो वो तो उड़ जाएगा, तो तवाई की तरह इधर उधर देख रहा है, मैं उनकी सेवा करती जा रही हूँ। तो बाबा कहते हैं नब्ज देख करके सेवा करनी चाहिए। जिज्ञासु सही हो तब सेवा करनी चाहिए, नहीं तो जो कुछ हमारे पास है वो भी व्यर्थ गंवा रहे हैं। आवश्यकता है तो सेवा करो, और क्या देना है उसकी भी परख हो। जिसको बाबा कहते हैं किसी को पानी की प्यास हो और आप उसके आगे 56 प्रकार का भोजन रख दो, ये भी खाओ वो भी खाओ, वो कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, बस पानी चाहिए, प्यासा हूँ, भूख नहीं है, पानी चाहिए। तो प्यासा है और हम सोचे उनको मैं ये भोजन खिलाऊं, तो वो भोजन कोई काम का नहीं उसके लिए। कोई किसी को शांति चाहिए और मैं उसको सतयुग की बातें सुनाऊं, उसको सत्यों की बातें नहीं सुननी है, उसको तो शांति चाहिए। स्वर्ग में ये होगा, महल बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विश्व का महाराजा बनेंगे, ये सब उसको नहीं चाहिए। तो हमारी सेवा क्या जाएगी? निष्फल जाएगी, निष्फल जाएगी ना। किसी जमीन में बीज डालना है लेकिन वो बीज ही बंजर है, वो धरती बंजर है, और हमने सोचा मैं तो बीज डाल रही हूँ ये तो धरती फल देगी, लेकिन वो बंजर है, उस पर हल चला ही नहीं है, पथरीली जमीन है, उसको सिंचाई नहीं है, कुछ नहीं किया, ऐसे बीज डाल दिया, तो वो तो निष्फल जाएगी ना। इसीलिए ये भी कहा गया है कि दान हमेशा पात्र को देख कर दो, पात्र को दो, कुपात्र को भी नहीं दो, सुपात्र को दो। बाबा जब बिच्छू का मिसाल देते हैं तो उसमें क्या भाव है? बिच्छू का मिसाल क्यों बाबा देते हैं? बिच्छू में डंक मारने का संस्कार है, हर एक चीज को डंक मारेगा, वो ये उसके पास कांटा है, वो डंक लगाएगा। लेकिन जब देखता है कि ये तो कठोर स्थान है, इसको डंक लगता नहीं है, उसके लिए तो नरम स्थान चाहिए, तो कठोर है तो छोड़ देगा, डंक लगाना है पर कठोर है तो छोड़ देगा, उसके पीछे नहीं पड़ेगा। तो सेवा तो सबकी करनी है, लेकिन ये नहीं है कि मैं सेवा करूं अपने नाम मान शान के लिए। भक्ति में तो इसी में सेवा करते हैं। कहीं पर मंदिर बनाने के लिए दान करने की बात आती है तो सूची बन जाती है, इसने इतना दान किया, इतना दान किया, इतना दान किया। अभी मुझे भी कहा गया दान करना है और मेरे पास तो बहुत धन है, तो मैं सोचूंगी कि मैं उतना करूं जो मेरा नाम सबसे पहले आ जाए। किसने सबसे ज्यादा दिया है पूछेंगे, उसका नाम ऊपर है सूची में, तो चलो मैं उनसे और ज्यादा देता हूं, मेरा नाम उनसे ऊपर करो, तो मेरा नाम मान शान होगा। इसीलिए दान करूं नहीं, इसीलिए सेवा करूं नहीं, ये सेवा नहीं है। इससे कोई सचमुच हमारी दुआएं जमा होगी नहीं, निस्वार्थ सेवा चाहिए, पर पात्र देख करके भी सेवा चाहिए। मुझे कोई सुना रहा था एक भाई कि एक सेवा केंद्र पर एक भाई था, ये विचित्र कहानी आप लोगों के भी ध्यान पर रहे। सेवा केंद्र पर वो आता था, कोर्स कराता था और बहुत सेवा करता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोगों से पैसा मांगता था, किसी से 100 रुपया, किसी से 500, किसी से 1000, कहता था मेरे ऊपर थोड़ा कर्जा है, मेरे ऊपर ये है, हर एक को अपनी अलग अलग कहानी सुनाता था। तो सब उस पर दया करते थे, सब बेचारा चलो सेवा तो बहुत करता है, दे दो दे दो दे दो। आखिर इतनों का उसने ले लिया था और किसी ने दूसरे को बताया नहीं, किसी को बताया नहीं, हर एक ने सोचा चलो दया करो, दो उसको धन दो। एक दिन वो कंप्यूटर पर बैठा था और कंप्यूटर पर गैम्बलिंग कर रहा था, गैम्बलिंग समझते ना, क्या बोलते जुआ, आजकल तो कंप्यूटर पर भी हो जाती जुआ, उसमें पैसे भी देने पड़ते हैं। तो वो जो सबसे पैसा लेता था वो जुआ में खर्च करता था, इतना जुआ में उसने खर्च किया। और फिर उसके बाद एक एक बहन बड़ी होशियार थी, उसने देख लिया ये क्या कर रहा है, ये तो जुआ खेल रहा है, पैसा तो इसमें लगा रहा है। उसने कहा मैंने आपको जो 5000 रुपया दिया वो लाओ वापस। कहते नहीं मुझे ये काम है। कहा ये काम क्या है, तो आप जुआ खेल रहे हो। बस उसने जो भंडा फोड़ा, उसने सबको कहा अरे ये तो जुआ खेल रहा है और देखो मेरे से पैसा मांगा। अब सारे बोल पड़े मेरे से 1000 लिया, मेरे से 5000 लिया, मेरे से 10000 लिया, मेरे से दया करके देते देते गए देते गए, और एक दो को बताया नहीं, और पता चला वो सबके पैसे लेकर के जुआ खेल रहा है और हमेशा जुआ में हार ही रहा है, क्योंकि जीतता तो क्या होगा अगर अगर नहीं है। अब हर बार कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, और देखो तो कोर्स करा रहा है, एग्जीबिशन समझा रहा है, योग में ऐसे बैठेगा जैसे कि उस जैसा योगी कोई है ही नहीं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। लेकिन फिर कईयों ने कहा कि कैसे पता चले, कैसे पता चले कि इसके अंदर में क्या है। हम तो समझते बड़ा जेन्युइन है, बहुत ही अच्छा लायक है, बाबा का बहुत ही प्यारा बच्चा है। लेकिन फिर ये भी कहा जाता है ना, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। फिर आखिर मैं उस सेंटर पर गई थी तो मुझे ये बताया कि ऐसे ऐसे बात है। फिर तो उस भाई को तो बैन कर दिया, सेंटर पर आने की छुट्टी नहीं दी। अब उसको कहा पैसा वापस करो, पैसा वापस भी नहीं करना है क्योंकि है ही नहीं, कहता मेरे पास, क्योंकि सब गंवा रहा है, पैसे लूट करके ले करके गंवा रहा है और कह रहा है कि मेरे पर कर्जा है, मेरे पर ये है, मेरे पर वो है। तो उसको बैन कर दिया, सेंटर पर आना ही छोड़ दिया। फिर लोगों को अपने घर में बुलाने लगा, देखो ये मेरे पर ये मकान बना रहा हूँ ये, और सब झूठ, सब झूठ। और दिखाता ऐसे कि मैं तो इतना सच्चा हूँ, इतना सच्चा हूँ, जो मेरे जैसा सच्चा कोई है ही नहीं। अब परख शक्ति चाहिए, किसको हम मदद करें। और बाबा हमेशा कहते जहाँ धन की बात आती है वो तो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसे ही ऐसे ही नहीं कि बस हमने अंधविश्वास में किसी को दे दिया, क्योंकि ये भी बाबा का धन है। बाबा का धन है तो इस बाबा के धन को भी सफल करना है, न कि ऐसे किसी को दे करके व्यर्थ गंवाना है। तो सेवा में भी परख शक्ति चाहिए, देने में भी परख शक्ति तो जरूर चाहिए। पर फिर भी जब ऐसी बात हुई तो फिर आखिर सबको यही समझाया, कोई बात नहीं, चलो हिसाब किताब था, हाँ पूरा हो गया, पता नहीं किस जन्म का आपने उनसे लिया होगा, अभी पूरा भूल जाओ, अब क्या कर सकते हैं, बैन तो कर दिया, उसको आने नहीं देना है, पर और क्या कर सकते हैं। और प्रूफ तो कुछ है ही नहीं, कोई रिटर्न प्रूफ तो लिया ही नहीं कि 10,000 लिया है मेरे से, क्या रिटर्न प्रूफ है। अगर कोर्ट में केस भी करे वो कहेंगे एविडेंस कहाँ है, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए ये सारी बातें कलयुगी दुनिया में तो है, परंतु बाबा फिर भी कहते हैं कि ज्ञान दान करने में कोई नुकसान नहीं है, पर वो भी अपनी एनर्जी को की बचत भी करो। योग दान सबसे ऊंची चीज है, कर्मों से गुण दान ये भी बहुत ऊंची चीज है, ज्ञान दान, ये गुण दान, शक्ति दान, योग दान, ज्ञान दान, गुण दान, ये बहुत सुंदर चीजें हैं, इसमें कुछ नुकसान नहीं होता है। परंतु नुकसान भले न हो पर फिर भी बाबा कहते पात्र को देख करके दो। और एक न एक दिन वो दुआएं काम करेगी जरूर, वो भी हम जानते हैं, पत्थर भी पिघल सकता है वो भी हम जानते हैं। ये भी नहीं है कि पत्थर पर पानी डालते डालते वो पत्थर पिघलेगा नहीं, लेकिन वो तब हो जब वो व्यक्ति खुद रियलाइज करे। अगर वो रियलाइज ही नहीं करता, उसको समझ ही नहीं है कि मैं कुछ गलत भी कर रहा हूं, तो फिर आप भी क्या कर सकते हो, उससे तो फिर किनारा करना अच्छा है। इसीलिए पात्र को देख करके भी दान करना बहुत जरूरी है। एक मिसाल मैं देती हूँ कि मैं छोटी थी, मुझे याद आता है कि हमारे पड़ोस में जो परिवार रहता था, लौकिक घर में थी, तो एक रोज एक व्यक्ति आता था, रोज भोजन मांगता था, तो वो भोजन उनको देती थी, खाके चला जाता था, भिखारी था ही जैसे, रोज भोजन देती थी और रोज वो दुआ करता था, माता जीते रहो, तुम्हारे बच्चे जीते रहे, हाँ खुशी खुश सुखी रहो, बहुत कहता था। अब एक दिन पहुंच गया तो वो माता तो जरा बिजी थी, उसने खाना नहीं पकाया था, उसको जाना था कहीं बाहर मैरिज में शादी में जाना था, तो खाना बनाया नहीं उसने, क्योंकि जाना था, वो निकल रही थी, वो पहुंच गया, उसने कहा खाना दो। अब वो माता ने कहा भाई आज तो मैंने खाना पकाया नहीं, अच्छा है तुम ये आटा ले जाओ, खुद बनाओ। वो खुद का बनाना तो जानता नहीं है। तो उसने कहा नहीं, हमको तो खाना चाहिए। अब क्या हुआ, उसने मना कर दिया माता ने। तो जो बद्दुआएं उसको दी, जो बद्दुआएं दी, वो सारी जो दुआएं थी ना सब खत्म हो गई, पूरी हो गई। क्योंकि इतनी बद्दुआएं दी, फिर उसने भी गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया जो बात मत पूछो। तो दोनों ने एक दो पर गुस्सा ही किया, गालियां ही दी एक दो को। अब क्या क्या बोला होगा वो तो आप समझ सकते हैं, हर सब सब अनुभवी है। तो इसीलिए का पात्र को देख करके करो। परंतु दुआएं जो निकलती है वो दिल से निकले। हाँ, सच्ची सेवा करो पर पात्र को देख करके करो। ये दोनों बातें दान में आती है। दान पात्र को देख करके करो, और दूसरा दान करना तो गुप्त करो, दिखावे का नहीं करो, वो पुण्य नहीं बनता है। इसी प्रकार बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं कि तुम बच्चों को हड्डियां सेवा में लगानी है, रिटर्न की इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि ये तो बहुत ऊंची सेवा है। दो रोटी देना ये कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं है, मानते हैं ये भी सेवा है। रोटी कपड़ा मकान ये तो आवश्यकता है जीवन की। किसी को रोटी कपड़ा मकान अगर आपने थोड़ा दिलाया तो वो आपको दुआ देगा। लेकिन अगर आपने साथ में कुछ बुरा कर दिया या एक दिन नहीं दिया तो वो बद्दुआएं भी मिलेगी, कि वो पात्र तो है नहीं। इसीलिए पात्र बनाना पड़े पहले। यहाँ आते हैं ना कई, कहते हैं आप लोग क्या सोशल सर्विस करते हो, देखो दूसरे मंदिरों में जाओ तो वहाँ लंगर लगे हुए हैं, जो भी आता है उनको फ्री खाना मिलता है, गुरुद्वारों में जाते क्या नहीं मिलता है। आप लोग भी ऐसे लंगर चालू कर दो, सब आकर के यहाँ खा के जाए, यहाँ भिखारी खा के जाए, सब खा के जाए। हम कहते ये उस प्रकार से ऐसा नहीं है स्थान, ये तो विश्वविद्यालय है। हाँ, बाकी भोजन तो जो यहाँ आते उनको भोजन क्यों नहीं मिलता है। लेकिन हम ये भी साथ साथ कहते हैं कि पहले जो यहाँ की जो सूक्ष्म सेवाएं हैं, ज्ञान की सेवा है, उसको पहले समझो, अपने जीवन में कुछ अपनाओ, कुछ लाओ, परिवर्तन करो, ये बीज अपने अंदर डालो। बाकी भोजन तो कोई बड़ी चीज नहीं, ऐसे नहीं बस हजारों आते जाए खिलाते जाए और बस हो गई, का हो गई सेवा। ये तो जीवन का परिवर्तन चाहिए यहाँ। ये तो ज्ञान दान जो सबसे ऊंचा दान माना जाता है वो दान यहाँ दिया जाता है, भोजन तो सेकेंडरी चीज है। आज तो कई बार होता है ना, किसी के घर जाते हैं, उसने बुलाया, निमंत्रण तो दिया भोजन पर, लेकिन भोजन देते समय थोड़ी कुछ नोकझोंक हो गई, वो परोस रहा था और कुछ गुस्सा कर दिया, कुछ ऐसे अपशब्द कह दिए, तो लोग नाराज हो जाते, कहेंगे आपके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, हम भूखे रहेंगे लेकिन हम यहाँ नहीं खाएंगे, क्योंकि स्वमान सबको प्यारा है, उसको अपमान लगा। प्यार से परोसो, गाली देके, बुरा कह करके या अपशब्द कह के क्यों भोजन दे रहे हो। हम भोजन नहीं खाएंगे पर ऐसे अपशब्द नहीं सुनेंगे, कहते हैं ना। यानी भोजन कोई बड़ी चीज नहीं है, पर प्रेम उनसे ऊंची चीज है, वो तो आत्मा का भोजन है। तो आत्मा का भोजन पहले चाहिए आत्मा को। तो इसीलिए पहले हम क्या दें आत्मा को, इतना सशक्त बनाएं, तो फिर तो आपका ही घर है, फिर तो दुआएं ही दुआएं हैं, बद्दुआओं का तो प्रश्न ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सेवा भी करो, बड़े दिल से करो, रिटर्न में इच्छा भी नहीं रखो कुछ, पर परख शक्ति भी जरूर हो, नहीं तो दिल उदास भी हो सकता है। पर उदास भी नहीं करो, चलो कोई हिसाब किताब था चुकतू हो गया, शिक्षा ले ली उससे, अनुभव ले लिया। क्योंकि विश्वास भी एक बहुत बड़ी चीज है। विश्वास, किसी ने कहा है कि विश्वास अगर हमारे पास है और विश्वास से हम कोई कार्य करते हैं किसके प्रति भी, अगर उसमें असफल भी हुए तो कोई बुरी चीज नहीं है, पर विश्वास रखा ही नहीं और सफलता भले पाली, वो सफलता कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि विश्वास बड़ी चीज है, वो भी ये मानते हैं, पर परख शक्ति भी चाहिए। इसीलिए बाबा हमको बैलेंस की बात कहते हैं, हर बात में संतुलन रखो, क्या करना है क्या नहीं करना है, बाबा हमें मुरली में सब कुछ बताते हैं। तो सेवा भी करनी है, सफलता को भी पाना है, हड्डियां भी देनी है, दुआएं भी देनी है, खुशी में भी रहना है और लेट गो भी करते जाना है और परखना भी है, ये सब साथ में चले। विशाल बुद्धि भी बनानी है, संकुचित भी नहीं, अंदर में डाउट्स भी नहीं आए, हाँ वहम भी न हो, अनुमान भी न लगाएं, शक भी न करें, क्योंकि अनुमान वहम और शक ये तीन ऐसी बीमारियां हैं जो मनुष्य को बहुत दुखी कर देती है। कई बार होता है ना, हम किसी को बहुत सुख दे रहे हैं, बहुत कुछ उनकी मदद कर रहे हैं, अब हम उनको सुख दे रहे हैं और वो हमेशा यही सोचता है कि मैं उसको दुख दे रही हूं, जबकि मेरे मन में उसके प्रति कोई बुरी बात नहीं है, बुरा भाव नहीं है, मैं तो उसके सुख के लिए कर रही हूं, पर वो व्यक्ति समझ रही है कि मैं उसको दुख दे रही हूं। तो हम अपने आप से पूछिए, अगर मेरे अंदर में कोई भी बुरा भाव नहीं है, उल्टा भाव नहीं है, पर वो इस प्रकार से समझ रही है, तो ये उसकी अपनी कमजोरी है, क्योंकि उसके अंदर वहम है। कहते वहम एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए लुकमान जैसा हकीम, जिसके पास सब बीमारियों की दवाई थी लेकिन वहम की बीमारी की दवाई नहीं थी, ऐसे बताते लुकमान हकीम। तो वहम की बीमारी, अनुमान की बीमारी, अनुमान ये भी एक बीमारी है, शक करना ये भी एक बीमारी है, लेकिन ये अनुमान वहम और शक से हम ही दुखी होते हैं। चलो दूसरे के प्रति करते हैं तो उसको कुछ भी नहीं होगा, हमको ही दुख होगा, या हम अपने प्रति भी करते हैं, पता नहीं मैं योग्य हूं नहीं हूं, क्या हूं मैं, जो कर रही हूं ठीक कर रही हूं नहीं कर रही हूं पता नहीं, इसलिए हमारे लिए कसौटी कौन है, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा के आगे कितनी आत्माएं आई, बाबा की रोज मुरली में हम सुनते हैं, कितनी समस्याएं आई बाबा के पास, कितनी परीक्षाएं आई बाबा के पास, लेकिन बाबा कैसे तीक्ष्ण बुद्धि थे, परख शक्ति बहुत श्रेष्ठ थी बाबा की, और कैसे उसको पार किया, किसे नफरत भी नहीं की, किसके प्रति घृणा भी नहीं रखी, किसी का अपकार भी नहीं किया, लेकिन हर एक का परोपकारी करना है, हर एक को दुआ देनी है, चाहे कोई कितनी भी बद्दुआ दे, और फिर देखो अंत में तो विजयी होंगे ही, कहां जाएंगे। लेकिन परख शक्ति बाबा की जबरदस्त थी। एक बार बाबा के पास एक आया, बाबा मेरे पास ये बहुत धन है, मैं लगाना चाहता हूं। बाबा ने स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि बाबा उसकी जैसे जन्मपत्री समझ गए कि ये बच्चे, हाँ ये जो है ना, इनके पास ये इतना सारा ब्लैक मनी है, ये क्या है, ये गवर्नमेंट से बच रहा है, कुछ ऐसी बात होगी, हाँ हम दे देवे यज्ञ में। बाबा ने स्वीकार ही नहीं किया, नहीं स्वीकार किया, नहीं तो वो सोचे मैं तो बाबा को दे रहा हूं। बाबा समझ गए, क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर बाबा लेते हैं तो फिर बाबा को देना भी पड़ेगा, हिसाब ही हिसाब है, अंत में तो बहुत आएंगी आत्माएं, बहुत कुछ देना चाहेंगे, पर बाबा स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं होगी। हाँ जब आवश्यकता का समय है तब उस समय देते हैं, मदद करते हैं, तो अवश्य दुआ मिलती है। तो कैसे हम दें दूसरों को दुआ, उसके लिए पहले अपनी संकल्प शक्ति को ऊंच बनाओ। मन में कोई भी घृणा भावना भी न हो, दया भावना भी आए, देना है ये भावना भी आए, साथ साथ सेवा की भावना भी आए, रिटर्न नहीं चाहिए ये भी भावना आए, तो अवश्य दुआएं मिलेगी जरूर, क्यों नहीं मिलेगी। लेकिन अंदर में इच्छा कोई न हो और परख शक्ति होगी तो बाबा की, जैसे बाबा की स्मृति होगी वो टचिंग आएगी, उसे परख शक्ति भी आएगी, पहले से ही सावधान हो जाएंगे अगर कोई ऐसी बात है तो। तो अपने आप को मोल्ड भी करना है, सब कुछ अपने अंदर में, खुद को भी पहचानना है, परिस्थिति को भी पहचानना है, दूरांदेशी भी बनना है, निस्वार्थ भाव भी रखना है। तो देखो कोई भी गलत कार्य हमसे नहीं होगा और हम बहुत हल्के रहेंगे। और फिर बाबा कहते हैं रात को अपना बैंक बैलेंस देखो, अपना अकाउंट चेक करो कि आज सारे दिन में मैंने क्या किया, दुआएं जमा की या किसकी बददुआएं भी जमा की, मैंने अपने मन वचन कर्म तन मन धन जो कुछ भी, या संकल्प श्वास शक्ति समय, इसको सफल किया या नहीं किया। अगर सफल किया, अंतरात्मा संतुष्ट है, तो जरूर दुआएं मिलेगी और यही दुआएं मुझे बहुत अच्छी नींद भी दिलाएगी, भूख भी अच्छी लगेगी, अंतर की खुशी भी बढ़ेगी और साथ साथ लगन से और सेवा भी करते जाएंगे, थकावट भी नहीं होगी। लेकिन परख शक्ति भी चाहिए, बाद में पश्चाताप नहीं चाहिए, इसलिए त्रिकालदर्शी बन करके भी सेवा करनी है। अब ये सारी बातें बाबा कैसे हमें देते हैं, बाबा कहते हैं जब भी कोई कार्य करो बाबा से राय लो, अंदर ही अंदर बाबा से पूछो बाबा ये मैं करूं। कई बार क्या होता है कि हम तो समझते ये बाबा की टचिंग है मुझे, ये भी होता है कई हमसे प्रश्न करते हैं, हमें कैसे पता चले ये बाबा की टचिंग है या ये मेरी मनमत है, कैसे पता चले। हमें तो लगता है ये बाबा की टचिंग मुझे हो रही कि ये करना है वो करना है वो करना है, लेकिन जैसे हम करने जाते हैं तो विघ्न आते हैं। अगर विघ्न आते हैं तो समझो ये बाबा की टचिंग नहीं है, ये मेरी अपनी मनमत है। विघ्न आया माना एक रुकावट आई, जरूर कुछ उसमें कमी है, शक्ति नहीं है। और अगर वो बाबा की टचिंग होती तो केवल मुझे ही संकल्प क्यों आए, दूसरों को भी तो आना चाहिए, बाबा की टचिंग तो दूसरों को भी आती होगी ना, केवल मुझे ही आएगी। पर दूसरे विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब है ये मेरी अपनी मनमत है, ये बाबा की टचिंग नहीं है। कई ऐसे भाई बहने हैं मनमत पर चलने वाले, वो कहेंगे बाबा ने मुझे टचिंग दी, बाबा ने टचिंग दी कि ये करना है वो करना है। दूसरे कहते ये नहीं करो ये सही नहीं है इससे नुकसान होगा, नहीं बाबा की टचिंग है मुझे। तो अगर कहीं रुकावट आई समझो ये बाबा की टचिंग नहीं है, ये अपना स्वार्थ है, उसी समय रोक देना चाहिए। ये नहीं कि बाबा की टचिंग समझ करके बाबा मुझे चला रहे बाबा मुझे करा रहे हैं, नहीं ये मनमत पर चल रहे हैं, तो उसे दुआएं कभी नहीं मिलेगी। चलो बददुआएं ना भी कोई दे, कोई कहेगा ठीक है इसको जो चाहिए करे, बददुआएं ना भी मिले पर दुआएं तो नहीं मिलेगी, उसमें शक्ति तो नहीं भरेगी। दुआएं भी तब मिले जब हम सबका साथ हो, आजकल नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये नहीं थोड़ों का साथ थोड़ों का विकास और बाकियों का नहीं। इसीलिए सबका साथ सबका विकास के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो दूर दृष्टि अपनानी पड़ेगी, त्रिकालदर्शी स्थिति अपनानी पड़ेगी, बड़ा दिल अपनाना पड़ेगा और फिर परक शक्ति भी अपनानी पड़ेगी। तीनों कालों को बुद्धि में रखना पड़ेगा, सबका साथ भी लेना पड़ेगा, तब बाबा की टचिंग भी अनुभव होगी और उसके साथ साथ हम आगे बढ़ सकेंगे। और फिर तो पुरुषार्थ को कुछ है नहीं, मेहनत नहीं है, क्योंकि अंदर दुआएं जमा होती जाती है, शक्ति मिलती जाती है, तो एक सेकंड में हम अशरीरी बन सकते हैं, एक सेकंड में हम न्यारे बन सकते हैं, हम एक सेकंड में लेट गो कर सकते हैं, एक सेकंड में ऊंचा जा सकते हैं। एक सेकंड का ही खेल होगा, युद्ध नहीं करना पड़ता है। अगर युद्ध कर रहे हैं अपने मन में, इसका मतलब सहज पुरुषार्थी नहीं है। बाबा कहते हैं तुम योद्धे नहीं हो, तुम तो योगी हो। तुम वियोगी नहीं हो पर योगी हो, तो योद्धा बन करके युद्ध कर रहे हैं तो ये तो वियोगी है। योगी माना हर वक्त वो योग है, हर वक्त हमारा कनेक्शन बाबा के साथ है, हर वक्त उनकी स्मृति में है हम। करण करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त बन के कर रही हूं, ये भी है, तो सही समय पर सही टचिंग आएगी। और अगर वो बाबा की टचिंग नहीं है, अवश्य एक सेकंड में हम उसको रोक भी सकेंगे, वो भी हमारे पास शक्ति होगी, क्योंकि बाबा के अनुसार ही मैं चल रही हूं। पर मनमत आ गई और हमने सोचा ये बाबा की टचिंग है, ये भी माया है, ये भी माया है, फिर कई उस माया को माया न समझ करके क्या कहते हैं, ये बाबा मेरी परीक्षा ले रहा है। एक भाई था, वो कहे अब है सब उसकी मनमत, उसको लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उसको रोक भी रहे हैं, लेकिन फिर वो क्या कहता है, बाबा मेरी परीक्षा ले रहा है। बाबा क्यों परीक्षा लेगा, ये माया के वश है, अपनी मनमत के वश है, बाबा परीक्षा नहीं लेता है। किसी के सामने कोई विघ्न आया, ये बाबा की परीक्षा, बाबा ने परीक्षा ली या ये माया आई या अपनी मन मत चला रहा है, जो विघ्न आया है तो उसकी मन मत ना, माया को भी दोष क्यों दे। माया क्या चीज है, माया तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमारी सोच ही है। इसीलिए माया माया कह करके अपने को छुड़ा भी नहीं देना है, बाबा परीक्षा लेता ये भी नहीं कहना है, पर मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, ये अगर अंदर में सोच है तो हम किसी दूसरे को दोष नहीं देंगे। बाबा से टचिंग लेंगे, बाबा अपना संकल्प बाबा को दे दो, फिर एकदम ऐसे निर्संकल्प हो जाओ और देखो बाबा क्या टचिंग देगा। अगर बहुत संकल्प मन में चल रहे हैं तो बाबा की टचिंग काम नहीं करेगी। जैसे क्लियर पानी चाहिए तब अंदर क्या है वो दिखाई देगा, अगर हलचल है पानी में तो अंदर क्या है दिखाई नहीं देगा। मन में बहुत तूफान है तो उसमें बाबा की टचिंग काम नहीं करती है। एकदम प्लेन बुद्धि हो, समर्पित बुद्धि हो, एक बाबा दूसरा न कोई, न्यारे प्यारे, तब देखो बाबा की टचिंग काम करेगी और वो कार्य सही भी होगा, सबका सहयोग भी मिलेगा। और नहीं मिलता सहयोग, ये दूसरों को दोष मत दो कि इसने ये सहयोग क्यों नहीं देता, ये क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं करता, हमको बदल जाना है बस। दूसरा क्यों नहीं बदलता ये भी शिकायत नहीं करो, मुझे बदल जाना, तब दुआएं मिलेगी, नहीं तो दुआएं नहीं मिलेगी। और दुआएं नहीं मिलेगी तो मेहनत ही करते रहेंगे, पुरुषार्थ ही समझते हम कर रहे हैं, पर वो पुरुषार्थ भी नहीं है, वो युद्ध ही है। पुरुषार्थ तो तब कहें जब एक बार अगर कोई भूल हुई तो फिर बदल गए, उसको पुरुषार्थ कहेंगे। मम्मा हमेशा कहती थी एक बार अगर कोई भूल हुई और अपने को बदल दिया तब पुरुषार्थी है, ये नहीं कि बार बार भूल करो और बार बार को मैं तो पुरुषार्थी हूँ ना, मैं तो पुरुषार्थी हूँ। तो चलिए, शिव पिता को चलिए अभी हम कुछ आत्मनिरीक्षण करेंगे। लाल लाइट जलाएं और आत्मनिरीक्षण करते हुए मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, इस पर हम आत्मनिरीक्षण करेंगे। सीधा बैठेंगे, आत्मनिरीक्षण कर आत्मविश्लेषण भी करेंगे कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो सही है या नहीं। ये बाबा की टचिंग है या नहीं, ये बाबा की श्रीमत है या नहीं, ये ब्रह्मा बाबा के कदमों में कदम रखना है या नहीं। सर्वप्रथम अपना दिल खोल कर देखो, मेरे अंदर कितनी सच्चाई है, कितनी सफाई है, सच्चे बाप की सच्ची संतान हूं मैं, मेरा मन कितना साफ है, कितनी सकारात्मक सोच है मेरे अंदर, कितनी मैं दूसरों की भलाई का सोचता हूं, कितनी निस्वार्थ भावना से सेवा करता हूं, और इसके साथ साथ श्रीमत अनुसार कितना कार्य करता हूं। अपने अंदर में पूछे, जो बाबा ने मुझे कहा है मैं वही कर रहा हूं या नहीं, मेरा अमृत वेले का चार्ट कैसा है, बाबा की मुरली कितना ध्यान से सुनता हूं और पढ़ता हूं, कितना मेरा समय मैं सफल करता हूं, कितने श्वास संकल्प व्यर्थ के खाते में जाते हैं, ये आत्मनिरीक्षण करें, आत्मविश्लेषण करें। आज सुबह से मेरा दिन कैसा बीता, कितना मनन चिंतन किया, कितना आत्मा को सशक्त बनाया, मुझे हर संकल्प हर श्वास हर घड़ी सफल करनी है। अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं, कितने समय में मैंने उन व्यर्थ संकल्पों को समाप्त किया, एक सेकंड में समाप्त हुए या नहीं, क्या मैं ब्रेक लगाने में सफल हुआ, क्या मैं स्वयं को बदल सका, क्या मेरी दृष्टि और वृत्ति पवित्र रही, क्या मैंने अपने वाणी पर कंट्रोल किया, ये आत्मनिरीक्षण आत्मविश्लेषण है। मुझे बदलना है, मुझे अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। मेरे मुख से सदा दुआएं ही निकले। मेरे मन में सबके प्रति शुभ विचार चले। ये भी आत्मनिरीक्षण है, आत्मविश्लेषण है। अगर ये सब नहीं हो रहे हैं तो कैसे मैं परिवर्तन करूं अपना। मेरा पुरुषार्थ सहज हो, सरल हो, युद्ध नहीं हो, क्योंकि मैं योगी हूं। राज योगी हूं। इंद्रियों का राजा हूं। मन का भी राजा हूं। मैं जो चाहूं वो मन में सोचूं, जो नहीं चाहूं एक सेकंड में विराम लगा दूं। जब चाहूं कर्म में आऊं, जब चाहूं कर्म से न्यारा हो जाऊं। शांत हो जाऊं। मैं आत्मा मालिक हूं। ये इंद्रियां मेरी सेवक है। मेरा मन भी मेरा सेवक है। मुझे अपने मन को केवल बाबा में ही लगाना है। बाबा ही मेरा सर्वस्व है। उनके साथ ही मेरे सर्व संबंध हैं। उनकी ही छत्र छाया में मैं आत्मा स्वयं को महसूस कर रही हूँ। उनके वरदानों का हाथ मुझ आत्मा के सिर पर है। शिव बाबा के सानिध्य में मैं उनकी लगन में मग्न हो जाऊं। यह विशाल नाटकशाला जिसमें हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ बज रहा है, मैं कितना साक्षी और दृष्टा हूँ, ये अपने आप से पूछिए। हर आत्मा अपना पाठ बजा रही है, कल्प पहले माफिक नथिंग न्यू। जितना ही न्यारा उतना ही सब का प्यारा, सब प्यारे हैं, सब मीठे हैं, सब मेरे भाई हैं। सबका कल्याण हो, इस दुनिया में कोई भी बुरा नहीं है, हम इस संसार में बस एक ही कार्य करने आए हैं, दुआएं देना और लेना। यही मुझ आत्मा का स्वधर्म है। कोई कैसा भी हो पर मुझे दुआएं देनी है, उनका भलाई सोचना है, उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। मेरा दिल बड़ा है, विशाल है, मैं आत्मा, बाबा के दिल तख्त नशीन हूँ। शिव बाबा का दिल जीतने के लिए सच्चा दिल मैं बाबा को अर्पित करती हूँ, मैं आत्मा सदा आपकी थी हैं और सदा रहूंगी। मेरा सच्चा साथी स्वयं भगवान है। कोई भी विघ्न समस्या मेरे आगे कागज का शेर है। आत्मा स्वनिरीक्षण कर आत्म संयम अनुभव करे, यही आत्म संयम आत्म परिवर्तन करेगा। और आत्म परिवर्तन विश्व परिवर्तन करेगा, यही मुझ आत्मा का लक्ष्य है। ओम सफेद लाइट करेंगे तो इसी में बैठे रहेंगे तो ऐसे ही आत्मनिरीक्षण करके अपने अंदर में परिवर्तन लाना है, क्योंकि यही परिवर्तन हमें ऊंचा बनाएगा, यही परिवर्तन हमें सहज पुरुषार्थी बनाएगा। है बस संकल्पों का अंतर, और कुछ नहीं। हमें और कुछ नहीं करना है। तो पहले आत्मचिंतन चाहिए, आत्मनिरीक्षण चाहिए, आत्मविश्लेषण चाहिए, आत्मसंयम चाहिए, आत्म परिवर्तन चाहिए। तो आत्मनिरीक्षण में मेरी वृत्ति कैसी है, मेरी दृष्टि कैसी है, मेरी भावना कैसी है, ये सब आत्मनिरीक्षण में आता है। दृष्टि वृत्ति स्मृति स्थिति कृति इन सब से स्वयं का पता चलता है। तो कैसे हम अपने अंदर परिवर्तन करें जिसमें पुरुषार्थ भी नहीं करना है, सहज भी हो और सहज के साथ साथ सबकी दुआएं भी मिलती रहे और हम भी सबको दुआएं देते रहें और बाबा की टचिंग भी मिलती रहे। ये टचिंग बाबा की जो मिलती रहेगी वो हमको उड़ाएगी। और अगर हम नहीं उड़ पा रहे हैं, नहीं दुआएं मिल रही है, नहीं बाबा का दिल जीत रहे हैं, इसका मतलब अंदर में कुछ खोट है, अंदर में कुछ कमी है। इसीलिए दिल खोल के अपने अंदर में टटोलो कि मेरी कमी मुझे निकालनी है। ये बहाना नहीं देना है, क्या करे मेरे संस्कार ऐसे हैं, क्या करे मेरी आदत ऐसी है, क्या करे मेरा हिसाब किताब ये ऐसा है। न आदत को दोष दो, न संस्कारों को दोष दो, न अपने हिसाब किताब को दोष दो। दोष किसी का भी नहीं है, बाबा को भी दोष मत दो, खुद को भी दोष मत दो। मैं तो हूं ही ऐसा, कई बार हम अपने को ही दोष दे देते, मैं तो हूं ही ऐसा। लेकिन बाबा हमको किस नजर से देखते हैं, वो उसी नजर से हम अपने आप को देखें। बाबा हमको कभी भी उस नजर से नहीं देखते जिसमें कुछ हीन भावना हो। भक्ति में हमने अपने आप को बहुत हीन रूप में देखा, भक्ति में अपने आप को बहुत नीच पापी दास कपटी गंदा बंदा कहा, और अभी ज्ञान मार्ग में भगवान हमको बहुत ऊंची नजर से देख रहे हैं, तो हम भी अपने आप को उसी ऊंची नजर से देखें। और जैसे हम अपने आप को उस ऊंची नजर से देखेंगे, लाइन क्लियर होती जाएगी, हर एक को परख सकेंगे। फिर परखने में हो सकता है उसमें बहुत कमियां भी दिखाई दे, लेकिन उन कमियों को न देख हम उनकी अच्छाई को देखेंगे और कमियों की को नजरअंदाज करते आगे बढ़ते जाएंगे, अपने को भी सुरक्षित रखेंगे और दूसरे को भी धोखा न मिले ये भी उनको राय देंगे, सावधानी देंगे, फिर उसकी तकदीर हम न्यारे हो जाएंगे, हम उसमें फंसेंगे नहीं। कई बार हम राय दे करके न्यारे नहीं होते हैं, फंस जाते हैं। हमने इतनी राय दी, हमारा कहना क्यों नहीं माना, हमने इतनी राय अच्छी दी, हमारा कहना नहीं माना। राय देना फर्ज है, माने न माने ये उसकी तकदीर, हम न्यारे हो जाए। दुआ करना हमारा फर्ज है, पर वो दुआ स्वीकार करे या उससे अपना जीवन सफल करे ये उसकी उसके नसीब में है। पर मैं बद्दुआ न दूं, चाहे उसने कितनी भी मेरे प्रति हानि की, कितना भी अपकार किया, क्योंकि बद्दुआ देना ये भी संस्कार बन जाएगा। फिर बद्दुआ देने का संस्कार, नफरत का संस्कार, दुश्मनी का संस्कार, बैल रखने का संस्कार, वो मेरी मुझ आत्मा के लिए ही नुकसानकारक है, मेरी खुशी खत्म कर देगा। कई कहते हैं हमको दूसरों से तो बहुत प्यार है पर खुद से प्यार नहीं है, खुद से प्यार नहीं है। तो दूसरों से प्यार है पर खुद से भी तो प्यार चाहिए ना। प्यार का मतलब अभिमान नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो सबको दुआएं देता रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये प्यार नहीं है खुद के लिए, ये तो अभिमान है। और सच्चा प्यार माना अपने आप को भी उसी ऊंची नजर से देखना जैसे बाबा हमको देख रहे हैं। बाबा कितनी हमें कितने टाइटल्स देते हैं, उसी नजर से बाबा हमको देखते हैं ना। आज बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं, होली हंसों के रूप में देख रहे हैं, चमकते हुए सितारों के रूप में देख रहे हैं। आज बाबा हम बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिवान की नजर से देख रहे हैं, तो हम भी उसी नजर से अपने आप को देखें। ये है अपने से प्यार करना, और उस प्यार में, उस नजर में, उस दृष्टि में हम वही कर्म करेंगे। तो मैं अगर सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो मैं कोई कमजोरी का भी संकल्प नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर शुद्ध आत्मा हूँ तो अशुद्ध विचार मन में नहीं ला सकता हूँ। मैं होली हंस हूँ तो मैं किसका अवगुण नहीं ले सकता हूँ। ये अपने अंदर में निरीक्षण करते हैं। और ये जब अपने साथ ऐसे मेहनत इस प्रकार की करेंगे जिसमें हीन भावना भी नहीं आए, मैं तो पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता हूँ, शायद मेरे तकदीर में ही नहीं है, बाबा कहते ऐसे भी नहीं कहना है। पुरुषार्थ सहज होता रहे, अपने आप होता रहे, संकल्प बदलते जाएं, सबका दिल जीतते जाएं, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करते जाएं, तो देखो उड़ेंगे, क्यों नहीं उड़ेंगे। और अगर असफलता मिली तो कोई बात नहीं, हिसाब किताब चुकतू हो गया, दुखी नहीं होते हैं, चिंता नहीं करते, अशांत नहीं होते हैं कि ये क्यों हुआ, हुआ ठीक है, ड्रामा पूरा हुआ, अब आगे क्या करना है। समस्याओं को हम तोड़ने नहीं बैठते हैं। जैसे पानी होता है, अगर बीच में पहाड़ आया तो पहाड़ से टकरा टकरा करके उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, वो पानी अपना रास्ता दूसरा ले लेगा, रास्ते उसको बहुत मिल जाएंगे, वहीं खड़ा भी नहीं होगा। इसी प्रकार हम भी वहां खड़े ना हो जाएं, हम आगे बढ़ते जाएं। कैसे बढ़ते जाएं? छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो, छोड़ो छूटो आगे बढ़ो, छोड़ो भूलो, एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा दो। तो देखो हमारा पुरुषार्थ इतना सहज हो जाएगा, आत्मा उड़ती रहेगी, मेरा कुछ नहीं, मैं माध्यम हूँ, बाबा दे रहा है और बाबा दे रहा है, मैं तो मैं नहीं दे रही, वो करवा रहा है, मैं निमित्त हूँ। बस ये अगर हर वक्त हमारी बुद्धि में है तो हमारा पुरुषार्थ सहज भी होगा और दुआएं भी देते जाएंगे, दुआएं लेते जाएंगे, उड़ते जाएंगे और दूसरों को भी उड़ाते जाएंगे। अच्छा, अभी ओम शांति। अभी हम फिर से 5-10 मिनट और बैठेंगे, फिर समाप्त करेंगे, फिर से बैठेंगे और फिर से अपने अंदर देखें कि जैसे बाबा हम बच्चों को देखना चाहते हैं वैसे हम कहाँ तक बने हैं। बाबा मुझे कुछ किस स्थिति में देखना चाहते हैं, निराश भी नहीं होना है, आशावादी भी रहना है, बाबा के साथ का भी अनुभव करना है और ऊंचाइयों को भी छूना है। अभी बिल्कुल साइलेंस में चले जाएं, एकदम शांत, एकदम शांत। कोई अन्य संकल्प नहीं, आत्मा भरपूर होती जाए। शांति की गहराई में जाए, शांति की शक्ति अनुभव करें। हल्केपन की अनुभूति हो, इच्छा मात्रम अविद्या हो, निर्संकल्प अवस्था, न्यारी और प्यारी अवस्था, इंद्रिय जीत और मन जीत, बाबा की छत्र छाया के अंदर रहने वाली सदा मुक्त आत्मा, इसी परमानंद की स्थिति में रहकर सबको दुआएं देती जाओ।